बताना है कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो, स्टोरी सुनना चाहते हो, कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो? हाँ बोलो बोलो, हरे कृष्णा, बोलो बोलो, कौन सी कहानी सुननी है? फरमाइश, कहाँ गई वो नारद मुनि? कौन सी कहानी सुननी है? हाँ क्या बोल रहे हैं? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, ये जैसे हैं वैसे क्यों हैं, इसकी कहानी कितने लोगों को मालूम है? लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं, मे बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी का मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं एक मेरा ऑब्जर्वेशन जो है ड्रामा का वो बताना चाहता हूँ, डांस डांस का। डांस में आपने देखा राधा और कृष्णा बहुत गुलू 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 बोलो होते पहला ना कि नहीं पहला? हाँ तू पहला कि नहीं? नहीं पहला। सो ऐसे कहा गया कि जब भी प्रेम होता है ना प्रेम, तो आवाज धीरे 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 हो जाए कि एक दिन बंद हो जाती, और जब बहुत प्रेम होता है ना तो नो साउंड। यू बिलीव दिस? यू एक्सेप्ट दिस? हाँ, आवाज कब बढ़ती है? जब दो दिल दूर जाना आरंभ कर देते हैं, फिजिकली नहीं, दिल का अंतर जो दूर होता है ना तभी जोर जोर से आवाज आती है। जब दो दिल पास में आते हैं ना तो आवाज नहीं आती है। ट्रेन के बाजू हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, समझो बहुत दूर जा रहे हैं, यहां से वृंदावन जा रहे हैं, 18 घंटे का सफर है, और एक नई नई शादी किया हुआ कपल आपके साथ में बैठा हुआ है, आपके बाजू में उनका सीट है, आपको बिल्कुल आवाज नहीं आएगी वो क्या बोल रहे हैं, और आपको मालूम पड़ रहा है कि ये तो घंटों घंटों बोल रहे हैं लेकिन किसी को बाजू वाले को सुनना नहीं पड़ रहा है। तो प्रेम का लक्षण ये होता है कि आवाज एकदम धीमी हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है, उसके बाद में दिल से दिल, नयन से नयन, ये आवाज चलती रहती है। इसलिए राधा और कृष्ण बहुत देर तक बातें कर रहे थे लेकिन किसको सुनाई पड़ा? क्या नहीं पड़ा ना? हरे कृष्णा, इज दैट राइट और नो? हाँ, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों के लोगों को कहते हैं ना कि चिल्लाओ मत, धीरे बात करो, एक्चुअली ये मीनिंगलेस है कि जब प्रेम नहीं है तो चिल्लाना पड़ता है। क्यों कहते हैं? चिल्लाए बिना आप सुनते नहीं हो, इसलिए चिल्लाना पड़ता है, ऐसे होता है बात। इसलिए प्रेम बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रेम है तो लाइफ है, और नहीं तो लाइफ है लेकिन प्रेम नहीं है तो लाइफ नहीं के बराबर है, ये बहुत समझना जरूरी है। आनंदोत्सव मना रहे, क्यों मना रहे हम लोग? क्योंकि लोग दुनिया भर में इतनी फिल्म बनाते हैं, और सब फिल्म का एक ही थीम होता है, क्या होता है वो? यस बोलो ना, सारी फिल्में किस एक थीम पर बनती है? लव। इज दैट राइट? सब फिल्में लव पे बनती है, लेकिन वो जो आप देखते हो फिल्म में उससे असली प्रेम होता है क्या? कुछ वो खाली फिल्म में होता है, सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज, ये सब खाली फिल्म में होता है, असल में कुछ नहीं होता है। असल में क्या होता है? झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है, शंका लेते हैं, संशय करते हैं, क्या क्या करते हैं, शादी के बाहर अफेयर्स करते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर यू नो। फिर मर्डर होते हैं उसके बाद में, पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, फिर वन हस्बैंड, टू हस्बैंड, थ्री हस्बैंड, फोर हस्बैंड, है ना। अब इतना कॉम्प्लिकेट हो गया ना वो इंद्राणी मुखर्जी का केस, बाप रे बाप, वो फर्स्ट हस्बैंड के, सेकंड हस्बैंड क्या, इसका बच्चा, फिर उसका, फिर उसका, फिर किसका मर्डर, को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है एक्चुअली। वैसे हम लोग बार बार सुनते रहते हैं कि मेरे बच्चे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चे से फाइट कर रहे हैं, कुछ समझ में आया? एक पत्नी अपने पति से बोल रही है, क्या बोल रही है? मेरे बच्चे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। नहीं समझ में आया? जितना समझ में नहीं आया उतना आप अच्छे हो, अच्छे मतलब शुद्ध मन के, निर्मल मन के ऐसे हो। जितना जल्दी आपको समझ में आया मतलब आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। तो इसका मीनिंग यह है कि जो पत्नी है उसकी भी पहले बहुत शादियां हो चुकी है और उसमें से कुछ बच्चे उसके साथ में हैं। पति की भी कुछ शादियां पहले हो चुकी है, उसके भी पहले बच्चे उसके साथ में हैं, फिर इनकी शादी हुई है, फिर इनके भी कुछ बच्चे हुए हैं। तो क्या बोल रही है? मेरे बच्चे और आपके बच्चे मिलकर अपने बच्चों को मार रहे हैं। समझ में आया आपको? ये आजकल का वेस्टर्न कल्चर है और दुर्भाग्य से ये हमारे भारत के लोगों को भी अच्छा लगने लगा है। तो सावित्री और सत्यवान का ड्रामा जो है उसमें से वो नारद मुनि ने क्या बताया आपको, क्या सीखना है? एक बार किसी को दिल दिया ना, उसके बाद में दोबारा किसको दिल देते नहीं है। वो गोपियां भी कहती है, अरे उधो दिल नहीं है 10-50, है ना, बोलते हैं ना उधो, हाँ बोलते 10-20 दिल नहीं हमारे पास, एक ही दिल था, वो दे दिया उसको और वो गया निकल के मथुरा। अभी क्या कर रहे? मन 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 का भी बताते हो, मन नहीं है 10-50। तो ये हमारा संस्कृति है, कल्चर है। पुराने जमाने में आप जानते हो ना कि वो भीष्म देव गए अंबा, अंबालिका और अंबिका, इन तीनों को वर ढूंढने के लिए चले गए। तो उनका स्वयंवर, सॉरी उनका सॉरी उनके स्वयंवर में गए अपने दो पुत्रों को, मतलब उनके पुत्र नहीं थे वो, सत्यवती के पुत्र थे, उनको ढूंढने के लिए गए। तो जाकर ऐसा ही वीरत्व दिखाया, वीरता दिखाई कि तीनों को छीन कर लेके आए। घर लौट के आए तो सत्यवती को प्रस्तुत किया कि आपकी तीन कन्याएं मैं आपके पुत्रों के लिए लेके आई हूं। तो अंबा थी ना वो पहली, उसका नाम अंबा था। एनीवे उसमें एक जो थी वो क्या, उन्होंने कहा माता से, कहा माता मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। तो वो कहते क्या निवेदन करना चाहती हो? वो कहते हैं कि मैंने मेरा दिल शाल्व को पहले दे चुका है, मतलब आई एम इन लव विथ शाल्व, तो मैं दिल मेरा दे चुकी हूँ उसको, तो मैं आपके पुत्रों से शादी कैसे कर सकती हूँ? तो बोले अच्छा, अरे पहले क्यों बताया? तो बोले क्या करें, इतना बड़ा घनघोर संग्राम था उधर, जब भीष्मदेव आए तो उनके सामने कौन क्या बोलेगा, ऐसे आए हवा के तूफान की तरह, सबके मुकुट गिरा दिए, सबका वध कर दिया और हमको तीनों को छीन कर ले गया, बोलने का मौका ही नहीं मिला। अभी पहली बार बोलने का मौका मिला तो बोल रही हूँ। बोला ठीक है, इसको सम्मान के साथ शाल्व के राज्य में पहुंचाया जाए, जिसके साथ में उसका विवाह होगा। तो सम्मान के साथ में उसको लेके जाते हैं शाल्व के राज्य में। तो शाल्व क्या बोलता है, यस आई डू लव यू, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अभी आपको हाथ पकड़कर भीष्मदेव लेके चले गए हैं, और जिसका हाथ अगर किसी पर पुरुष ने, किसी पुरुष ने एक बार पकड़ लिया तो वो उसकी विधव पत्नी हो जाती है। तो मेरा आपसे प्रेम निश्चित रूप से है, लेकिन आपका हाथ का स्पर्श भीष्मदेव ने किया है, इसलिए मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। तो फिर दोबारा लौट के वो कुरु राज्य में आई और भीष्मदेव से कहा कि वो ऐसे बोल रहा है तो भी आपको शादी करनी पड़ेगी। तो भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं, मैंने ब्रह्मचर्य का वचन लिया है, मैं आज जन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, तो मुझे ये सब पता नहीं है, मुझसे आपको शादी करनी पड़ेगी, तो नहीं मानती हो, तो वो सत्यवती के पास आती है, तो माता इनको आदेश दो, ये मेरा हाथ पकड़ कर लेके आए हैं, क्यों पकड़ कर लेके आए अगर शादी नहीं करनी तो? अब ना वो शादी कर रहे ना ये शादी कर रहे, तो मेरा क्या होगा? तो फिर बहुत बहस होती है और फाइनल रिजल्ट होता है कि नहीं, भीष्म देव शादी नहीं कर सकते, तो फिर वो जंगल चले जाती है और तपस्या करती है कि मैं इसका बदला लूंगी, मुझ पर अन्याय किया गया है, तो शिवजी की तपस्या करती है, सॉरी शिवजी की तपस्या कर साधु लोग उनको आदेश देते हैं वगैरह, सहारा देते हैं, उनके सहारे में तपस्या करती है, तो फिर परशुराम प्रकट होते हैं, भीष्मदेव के गुरु, और वो आदेश देते हैं या तो शादी करो या तो मुझसे युद्ध करो, तो कहते कि नहीं मैं आपसे आपसे युद्ध करूंगा, शादी नहीं करूंगा। और युद्ध में वो कई दिन युद्ध होता है और परशुराम भगवान भीष्मदेव को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते हैं। फाइनली परशुराम भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे इतना बड़ा शिष्य है मेरा, मुझे परास्त नहीं, मतलब मैं उसको परास्त नहीं कर पा रहा हूं, तो वो युद्ध रोक देते हैं, मतलब कोई बात नहीं। तो वो ये सब देख रहे हैं सब लोग कि अगर युद्ध में हारेगा तो फिर शादी करेगा, सब लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में तो परशुराम भगवान प्रसन्न होते हैं, युद्ध रोक देते हैं। तो फिर वो जाती है जंगल निकल के, भी अगला जन्म लूंगी, तपस्या करूंगी और इसके वध का कारण बनूंगी। लेकिन उसका एक तात्पर्य ऐसे बताया गया है कि एक्चुअली वो भीष्मदेव से गुस्सा नहीं थी, वो भीष्मदेव का शौर्य देखकर बड़ी प्रभावित हो गई थी वो, लेकिन वो आर्य कन्या थी, उसका मन ऐसा नहीं था कि ये भी अच्छा लगा वो भी अच्छा लगा, उसका मन तो शाल्व पर ही था, लेकिन वीरता से प्रभावित हो गई थी वो, तो चाहती थी कि ये इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा श्रेष्ठ योद्धा, विद्वान, आदरणीय, हर प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन ये ब्रह्मचारी बनकर इस पर अन्याय किया गया है। बड़ी लंबी कहानी है पीछे की वो, तो वो उस प्रेम के वजह से चाहती है कि इनका जीवन जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये जीवन भर तड़पते रहेंगे दूसरों की सहायता और रक्षा करते हुए। तो फिर वो तपस्या करती है और वरदान मांगती है कि मैं इनकी मृत्यु का कारण बनूं, द्वेष से नहीं, उनके लिए मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको और एक उन्होंने एक निर्णय लिया था, उनके पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया ब्रह्मचारी का, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इच्छा मरणी हो जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम मरो, कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। तो वो जानती थी कि वो जब तक कुरु सिंहासन पे कोई अच्छा आदमी नहीं बैठेगा तब तक वो मेहनत करते रहेंगे, पीढ़ी पीढ़ी निकलती रहेगी, ये जिंदा ही रहेंगे और इतना पॉलिटिक्स और इतना सब दुख का अनुभव करते रहेंगे। तो फिर वो राजा द्रुपद के यहां एक नपुंसक के रूप में जन्म लेता है, वही जो कन्या है, शी टेक्स बर्थ, पहले दृष्टद्युम्न का जन्म होता है यज्ञ से, फिर यज्ञ से द्रौपदी का जन्म होता है, और उसके बाद में किसी और समय पे एक लड़का पैदा होता है, लेकिन वो लड़का होते हुए भी वो नपुंसक है, लड़की भी नहीं लड़का भी नहीं है, क्योंकि भीष्मदेव आगे जाके युद्ध में आप देखते हो कि जब भीष्मदेव को मारने का प्रसंग आता है तो सब लोग हार जाते हैं, एक दिन में आधी सेना समाप्त कर देते हो, एक दिन के अंदर 11 अक्षौहिणी सेना में से 5.5 अक्षौहिणी सेना एक ही दिन में समाप्त कर देते, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, सब कृष्ण के पास जाते हैं, पूछते हैं भगवान अगर ये भीष्मदेव जिंदा रहे तो हो गया हमारा विजय इधर ही। उन्होंने कहा कि भीष्मदेव को आप डायरेक्ट सीधे से मार नहीं सकते, कुछ योजना बनानी पड़ेगी उनको। तो भगवान कहते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि क्या किया जाए, तो बोले एक काम करो आप भीष्मदेव के पास ही उनको जाके पूछो कि आपको कैसे मार सकते हैं, अभी आप देखो इतने आदरणीय व्यक्ति है वो, उनको कैसे खुद जाके पूछेंगे, टेल मी हाउ टू किल यू, हाउ इट इज पॉसिबल, बोले हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, उनके कंधे पर गोद में हम लोग खेले बचपन से, उनसे सीखे हैं, वो हमारे चरणों के वंदन करने के लायक है, उनको हम कैसे पूछेंगे, लेकिन फिर नहीं पूछना है तो मरो फिर तुम सब लोग। तो फिर जाते हैं उनको पूछने के लिए, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, फिर पूछने का साहस करते हैं कि हमें अभी समस्या ऐसी है कि आप रहेंगे तो ये युद्ध हम जीत नहीं सकते हैं, और आप भी चाहते कि हमें जीतना है, तो आपको कैसे मारा जाए। तो फिर वो बड़े खुश हो जाते हैं, तो आज तक मुझे सवाल किसी ने नहीं पूछा, आज मेरी मुक्ति का दरवाजा खुला हो गया है। तो कहते हैं फिर एक रहस्य की बात है कि अगर मेरे सामने कोई नपुंसक व्यक्ति आएगा और शस्त्र उठाकर ललकारेगा युद्ध में मुझे, सावधान, तो मैं शस्त्र नीचे डाल दूंगा, क्योंकि मैं नपुंसक के साथ युद्ध नहीं कर सकता, स्त्री और नपुंसक के साथ में आई कैन नॉट फाइट विद इंपोर्टेंट पर्सन और अ लेडी। तो फिर वो उस शिखंडी नाम के पुत्र को सामने करते हैं सेनापति बनाकर, उसके पीछे अर्जुन और बाकी सब लोग उसके पीछे, ऐसी रचना बनाते हैं और सेनापति बनाकर शिखंडी को सामने लेके जाते हैं और वो धनुष उठाकर सावधान भीष्मदेव ऐसे करते हैं। उसको देखते ही भीष्मदेव अपना धनुष नीचे डाल देते हैं और उसके पीछे से फिर अर्जुन जो बाण चालू करते हैं, ऐसे कहा गया कि अर्जुन उनकी ओर देखते भी नहीं, इतना उनको दुख होता है, नीचे देख के बाण चलाते हैं और इतने बाण चलाते हैं कि दो बाणों के बीच में छोटी सी उंगली भी नहीं जा सकती, इतने बाण चलाते हैं। ऐसे कहा गया कि हर एक रोम यानी कि हर एक हेयर फॉलिकल के अंदर दो बाण थे उसके, कैन यू बिलीव दिस, इतने बाण मारे। तो भीष्मदेव समझ गए कि ये बाण शिखंडी के नहीं है, मैं जानता हूँ ये बाण अर्जुन के हैं, क्योंकि अर्जुन के सिवा किसी का भी बाण मेरे शरीर को छेद कर पार नहीं जा सकता है, वो केवल उसी के अंदर शक्ति है जो मेरे ऐसा बाण मारे जो मेरे शरीर से निकल कर बाहर जाए, यानी कम से कम हाफ थ्रू एंड थ्रू जाए। तो ये उस किसकी कहानी है, ये अंबा की कहानी है। और क्या नियम उसने पालन किया, जिसको दिल दिया उसके साथ शादी करना चाहिए। और हमको सबको आज ये सीखना है, हमारा आनंद उत्सव कैसा है, हमारा आनंद उत्सव डिस्को डांस का नहीं है, कम से कम कपड़े पहन के लड़के लड़कियों को मिलने जुलने का मौका, ये हमारा आनंद उत्सव का व्याख्या नहीं है। हमारे आनंद उत्सव का व्याख्या ये है कि हमें इस आनंद उत्सव के माध्यम में आनंद लेते लेते हुए ही कुछ सीखना है, कुछ टेक होम मैसेज मिलना है इसमें से। उन्होंने बहुत सुंदर नाटिका किया, आई एम कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना इसके अंदर। कि जो सावित्री, पहले तो नारद मुनि उसको बताते हैं कि अरे भैया माँ शादी मत करो उसके साथ, वो तो एक साल के बाद मरने वाला है, लेकिन वो क्या बोलती है, मैंने उसको जबान दे दी है, आई हैव गिवन द वर्ड, आई कैन नॉट टेक इट बैक, आई कैन नॉट बी सेल्फिश। अरे बाप रे, अच्छा ऐसा क्या, एक साल के बाद विधवा होने वाली हूँ, नहीं नहीं, फिर आई चेंज, दूसरा देखती हूँ जाके। ये आजकल के लोगों का मन विचार है, वो क्या कहते हैं, शादी तय करते हैं, बाद में बोलते हैं अच्छा लड़के को डायबिटीज है, नहीं 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 शादी कैंसिल, दूसरा लड़के को देखो, अरे अच्छा लड़के का ऐसा है क्या, एक पैर उसका एक इंच से छोटा है, उसको बचपन में थोड़ा सा पोलियो हुआ था, थोड़ा सा पोलियो फीवर हुआ था, तो ठीक हो गया वो, लेकिन उसमें से एक इंच उसका एक लेग छोटा है, तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट। तो हमारे लोगों का, आजकल के लोगों का कैसा क्राइटेरिया होता है, केवल शारीरिक और केवल भौतिक, फिजिकल एंड मटेरियल, मतलब कैसा, दिखने में सुंदर होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये देखते नहीं कोई भी कि गुण क्या है उसके, लड़की के या लड़के के गुण क्या है, परिवार क्या है, उसका कल्चर क्या है, कौन से परिवार में उसका लालन पालन हुआ है, क्या उसके अंदर खूबियां हैं, क्या कला है उसके अंदर, क्या उसके स्पिरिचुअल उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, कोई देखता नहीं उसको। इसलिए क्या होता है आजकल के ज़माने में, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ये आजकल का फॉर्मूला है। एक बार कितने स्टोरीज मैंने देखे हैं, ये हॉस्पिटल में देखे हैं, उसके पहले भी देखे हैं, ऐसे बोलते प्रभु जी ने मैं उसके साथ बिना रह सकता नहीं, मैंने समझाया बहुत बहुत तरीके से कि आपके लिए सही नहीं है, नहीं नहीं प्रभु जी आई कांट लिव विदाउट हर, और परिवार के खिलाफ इसके खिलाफ सबके खिलाफ जाके शादी किया। हाँ, एक साल के बाद मैं आया, प्रभु जी मैं आई एम टेकिंग डिवोर्स, अभी क्या हो गया, यू आर नॉट एबल टू लिव विदाउट हर, सो नाउ आई एम नॉट एबल टू लिव विथ हर, आई कैन स्टैंड हर एनी मोर। एक साल के अंदर 360 दिन के अंदर किधर गया प्रेम सब था, वो इतना प्रेम कि माता पिता बहन भाई सबको छोड़कर, बिरादरी को छोड़कर उसके पीछे गया, अकेले के पीछे। राज कह रहा है कि नहीं चाहिए मुझे, और डिवोर्स हो भी गया उसके बाद में, क्योंकि वो प्रेम जो था ना, वो प्रेम था ही नहीं एक्चुअली, वो किसी भौतिक स्वार्थ पर आधारित था, कुछ एक चीज मुझे चाहिए थी, वो दिख रही थी उसके अंदर है, वो लगता था कि मिलेगी, इसलिए वो जब शादी की तब लग रहा था, बाद में पता चला था कि जो मैं देख रहा था वो मुझे नहीं मिलने वाला है, तो नहीं चाहिए, दैट्स इट, आई वॉन्ट टू चेंज। कैसा है मोबाइल, कैसा होता है मोबाइल, आज नया आया है तो चाहिए, कुछ दिन बाद उससे बढ़िया मोबाइल मार्केट में आता है, फिर क्या बोलते हैं, ये तो नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, या ये खराब हो गया समझो, तो रिपेयरिंग नहीं होता है, यूज एंड थ्रो, गेट अ न्यू वन. दिस इज टुडेज फिलॉसफी. वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं होता है, थोड़ा बिगड़ गया बोले साहब क्या को चेंज कर दो, इसका पार्ट बदली करेंगे तो 5,000 का पार्ट आएगा, मशीन 9,000 की आएगी, नौ मशीन नया ले लो साहब, क्या को चेंज करते हो, रिपेयर करते हो उसको. तो ये जो कल्चर है जो वस्तुओं के बारे में होता है, नो रिपेयर, यूज एंड थ्रो, वैसे फिर वो व्यक्ति वो ऐसी वस्तुएं यूज करके 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 उसका ऐसा भाव पैदा होता है कि आदमी को भी यूज एंड थ्रो, जब तक यूज है तब तक रखो, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, काऊ हो, एनिमल हाँ, या बीवी हो, जब तक यूज है तब तक रखो, जब यूज खत्म हो गया फेंक दो, नया लेके आओ. तो ये मानव मनुष्य की संस्कृति नहीं है. मनुष्य की संस्कृति यह है, एक बार कोई रिश्ता जोड़ दिया तो लाइफ लॉन्ग, दैट इज ह्यूमन कल्चर. कुत्ता बिल्ली का कैसा कैसा कल्चर होता है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि कुत्ते का पिल्ला जो है, मेल पिल्ला जो है, वो अपनी माता का दूध पीता है, अभी काफी बड़ा हो गया हो लेकिन फिर भी दूध पीता है, और कुछ देर के बाद में अपनी माता के साथ ही सेक्स करता है वो, बकरी का पिल्ला हो या कुत्ते का पिल्ला हो, क्योंकि वो एनिमल है. एनिमल में ऐसा कोई नियम नहीं होता है, नर और मादी एक ही नियम होता है बस, लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता है. सावित्री का जो जबान दिया उसने पूरा किया उसने, और पति पर उसका जो पातिवृत्य है, चेस्टिटी कहते हैं उसको, इतना स्ट्रांग है उसका कि यमराज को भी हारना पड़ा उसके सामने, ऐसा वर मांग लिया यमराज से कि यमराज भी उसको पति वापस देना पड़ा उसको. तो स्टोरी अपनी जगह पर है लेकिन स्टोरी में बहुत पावर है. यमराज जो यमराज के यम दंड के सामने कोई टिक नहीं सकता है, नो बडी कैन स्टैंड इन यमराज. कंस और रावण जैसे लोग भी यमराज से डरते थे, इतना पावरफुल यमदंड है, और वो यमराज भी उनके पतिव्रत के सामने हार गया, और वरदान भी दे दिया कि तुम्हारा नाम इतिहास में मशहूर हो जाएगा, आने वाले अनंत पीढ़ियों तक तुम्हारा नाम लोग गिनेंगे और उसकी चर्चा करेंगे. तो हम लोग तो सावित्री जैसे इतने श्रेष्ठ नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम जो हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंड होकर फॉलो कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट दैट मच वी शुड लर्न. नहीं तो हमारा चरित्र तो नष्ट होने वाला है, हमारे साथ साथ जो भी आएंगे उसका भी चरित्र नष्ट होने वाला है. जैसे इंद्राणी मुखर्जी के केस में अभी क्या चल रहा है, जो जो उससे कनेक्टेड हैं वो सब लोग अभी वन बाय वन जेल में जाएंगे, है ना. जो आदमी गटर में कूद चुका है उसके साथ जो जो चलेगा उसको दो चीज मिलेगी. क्या चीज मिलेगी? एक गटर का जो मसाला है वो लगेगा, और जो उसका बदबू है वो भी मिलेगा. जो जो उसके साथ चलेगा उसको दो चीज साथ में चलेगी उसकी, बिना चाहते हुए. इफ यू आर विद दैट पर्सन, द गटर का मटेरियल एंड गटर का स्मेल विल कैरी विथ यू. जो खुशबूदार व्यक्ति के साथ चलोगे आप तो आपको भी खुशबू मिलेगी, और जहां जाएंगे उसके हाथ में खुशबू का लाभ होगा आपको. तो ये समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे शास्त्र हैं. हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि कहानी सच है कि झूठ है, किसने देखा है. मैं तो कहूंगा सच है कि झूठ है भूल जाओ उसको, उसमें आपके लिए मैसेज क्या है देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज. जैसे आपको मैं अभी एक और एक कहानी बताता हूँ. हाँ चलो, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा की कहानी कई और बताएंगे आपको, जो याद आ रही है वो बताता हूँ. एक बुढ़े व्यक्ति को एक उसका लड़का जो है 30 साल का लड़का है, 30 पिताजी की उम्र कुछ 55-60 साल की है, उसको लेके पत्नी के कहने पर उसको लेके ओल्ड एज होम जा रहे हो. पत्नी बोल देगी आई डोंट वॉन्ट योर फादर एट माई हाउस. तो क्या करेगा बेचारा, प्रेम तो है पिताजी पर लेकिन अभी पत्नी चाहिए उसको, तो पत्नी का कहना मानता है और उसको एक ओल्ड एज होम पे लेके जाता है. वहां पर एक अधिकारी होता है ओल्ड एज होम का, वो उसका डेटा लेता है, पूरा नाम वाम सब लिखता है. लेकिन जब नाम वाम सब डेटा लिख रहा है, बातचीत हो रही है, तो लगता है कि ये तो बहुत जाने पहचाने हैं दोनों के, एक दूसरों के अच्छा लगता है जिस तरह से ये डेटा लिया जा रहा है, जैसे कि बहुत पुराने पहचान है इनकी. तो फिर वो लड़का वो इंचार्ज को पूछता है, क्या आप जानते हैं क्या इनको, मेरे पिताजी को जानते हैं आप? बीच में वाइफ का फोन आता है, मेक श्योर कि ही डजंट कम होम ऑन फेस्टिवल ऑल्सो. फेस्टिवल में भी वो घर पे नहीं आना चाहिए, ऐसा व्यवस्था करके आओ, वहां पर सेटिंग पूरा करके जितना चाहे पैसा दो लेकिन यहां पर नहीं आना चाहिए. बीच में फोन भी आता है, तब वो देख रहा है कि इनकी बातचीत हो रही है, तो पूछते हैं कि आपका पहचान है क्या. तो अभी मैं जो एक लाइन बताऊंगा वहां पर कहानी खत्म हो जाएगी. वो लाइन ये है, वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूं इनको, 30 साल पहले ये आकर एक लड़के को लेकर गए थे ऑर्फन के रूप में, गोद लेकर गए थे। और ये कहानी यहां पर समाप्त हो जाती है। 30 years बैक दिस पर्सन हैड कम टू मी टू टेक अ बॉय एज अ ऑर्फन एंड ही हैज टेकन होम। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो लड़का जो आया था ना वो ऑर्फन था, उसको इसने गोद लेकर बड़ा किया था और 30 साल में कभी बताया भी नहीं कि तू ऑर्फन है करके। आजकल ये हो रहा है। और ये मत समझना कि अरे हम लोग तो नहीं है ऐसे, ऐसा आपको मत समझना। अगर आप अगर उस तरह से व्यवहार करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ में वही व्यवहार करेंगे। अगर हम उस लड़के की तरह हैं जो अपने पिताजी को ओल्ड एज होम लेके जा रहे हैं, बी श्योर कि आपके बच्चे भी आपको ओल्ड एज में छोड़ेंगे जब आप बुढ़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको आपके बच्चे अगर देखते हैं, छोटे बच्चे हैं आपके घर पे, आप मिडिल एजेड हो और आपके पिताजी माताजी बहुत ओल्ड हैं और आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप अपने माता पिता की कितनी अच्छी सेवा कर रहे हो, प्रेम से दवा दे रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, कभी चरण दबाते हो उनके, कभी मीठी बातें करते हो, कभी चिल्लाते नहीं उनके ऊपर, कभी डांटते नहीं माता पिता को, हे तू जो बस गा, तू कितने बोलते हो बस टिक जाऊ, ऐसा नहीं बोलते हैं माता पिता को। अभी बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, क्या कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। जैसा आपको आपके बच्चे आपके माता पिता के साथ व्यवहार करते हुए देख रहे हैं, वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करेंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको वही आदर्श दिखाया है कि ऐसे ही किया जाता है, दिस इज आइडियल। हाँ, तो जो आपने किया है आपको पता नहीं आपको कैसा असर हो रहा है आपके बच्चों के मन पर, जो आप कर रहे हैं वही आपको आगे जाकर आपके बच्चे आपको आपकी ओर करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर मिस्टर तलवार करके डायरेक्टर थे कुछ समय के लिए बीच में, हाँ राजेश तलवार जी, उनके घर में हम लोग एक बार लंच लेने गए थे सब डॉक्टर्स मिलकर, उन्होंने बुलाया था हमको डिनर लेने गए थे। तो डिनर का स्टार्टर शुरू हुआ और स्टार्टर शुरू होने के बाद में कुछ देर बाद में उनको फोन आया, तो वो बोला एक्सक्यूज मी फोन देखता हूँ। तो फोन आया तो पता चला कि अमृतसर से उनकी माता जी का फोन आया, उनकी माता पिता अमृतसर में थे। तो ये जो गए तो बहुत देर तक आए नहीं, तो हमने देखा तो फोन पर रो रहे थे, वो बहुत देर तक रो रो के सिसकियां भरते हुए बात कर रहे हैं। और जाहिर था उनके बातों से सुनकर सुन रहा था, पता चल रहा था कि जो फोन पे बात कर रहे हैं वो भी रो रहे हैं, इट इज वेरी क्लियर, समटाइम्स यू कैन मेक आउट ना। तो ये भी जाहिर था कि उनकी माता जो फोन पे बात कर रही है वो भी रो रहे हैं और ये भी यहाँ पर रो रहे हैं, और कुछ बहुत प्रेम से कुछ बातें हो रही है कि याद आ रही है आपकी वगैरह वगैरह। और बहुत देर के बाद फोन बंद होता है और फिर वो आते हैं बाहर। तो हमने कहा प्रभु जी आप क्यों रो रहे थे, तो उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हमारा बहुत याद आती है माँ की, उनको भी याद आ रही थी, हम रो रहे थे। फिर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई इसके बाद में, वो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी। उन्होंने बताया कि अगर मेरे बच्चे आज मुझे मेरी माता के साथ फोन पर बात करते हुए रोते हुए देखते हैं तो आगे जाकर जब मैं उनको फोन करूंगा तो वो भी रोएंगे, क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि जब मम्मी का फोन आता है तो पापा रोते थे फोन पे प्रेम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कल्चर है हमारा, ये कल्चर को हमको फॉलो करना है। आजकल का जो कल्चर है उसमें से आनंद और खुशी नहीं मिलती है। तो वैसे आनंद उत्सव कर रहे हैं और आपको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आनंद उत्सव का मतलब क्या है ना। उस तरह से सब शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, सब प्रेम के लिए करते हैं, प्रेम चाहिए उनको, इसलिए वो मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद में प्रेम नहीं मिला तो सारा परिवार का जो प्रयोजन है वो यूजलेस हो गया, इज इट राइट। तो ये हमको देखना है कि हम लोग कौन सा कल्चर अपना रहे हैं, कौन सा कल्चर हमारे आत्मा के लिए आवश्यक है, कौन सा कल्चर हमारे लिए आनंद देने वाला है, कौन सा कल्चर हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है, विच इज द कल्चर विच इज बेस्ट फॉर आवर वेलफेयर। वो हमको अगर पता होगा तो फिर हमारा आज का जीवन वो भी धन्य है, आगे जाकर बूढ़े होंगे वो समय भी धन्य रहेगा, और आपके बच्चे भी आपको देखकर धन्यता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो कल्चर जब आप फॉलो करते हो तो आपके साथ जो भी आते हैं वो भी उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो कल्चर हृदय को आत्मा को खुशी देता है वो सबको आनंद देता है, वो सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि खोते हुए कल्चर को पकड़ के रखकर बचाकर पालन करना उसका, दिस इज आवर पर्पज ऑफ लाइफ। अभी स्कूल में नर्सिंग सीख रहे हैं, मेडिसिन सीख रहे हैं, बहुत सारे सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कल्चर का जो ट्रेनिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर यहाँ पर बनाया गया है, ताकि आपको आइडिया आ जाए एटलीस्ट व्हाट इज रियल कल्चर, क्यों हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतना सब डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर, उसमें 25 लोगों का जॉब और उसमें सबको तनख्वाह और इतना सारे प्रोग्राम, 500 प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सब ये? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पज? पर्पज ये है कि हम सब लोगों को ये पता चले कि हमारा रियल कल्चर क्या है, कौन सा कल्चर हमको सही में आनंद देगा, कौन सा कल्चर जीवन का कल्याण करेगा। तो यही इन सब कार्यक्रमों के, आनंद के, यू नो, हंसी मजाक के बीच में हम लोग सीखना चाहते हैं। और हमारा भाग्य यह है कि नेचुरली, तो रियल मतलब कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, नेचुरली हमारा भारत का जो कल्चर है ना वो श्रेष्ठ है। यू डोंट हैव टू बोरो एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड और लर्न एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमारा जो निजी कल्चर है, हमारे घर का, हमारे जाति का, हमारे धर्म का, हमारे देश का, हाँ, वो इतना श्रेष्ठ है कि हमको किसी से बाहर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर गाना बचपन में गाते थे, हाँ, जिस देश में गंगा बहती है, कितना सुंदर गाना था वो भजन, मतलब क्या वो फिल्म का गाना था, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है, ज्यादा की जरूरत नहीं, थोड़े में गुजारा होता है, हाँ, जिसमें सोने की चिड़िया चमचमाती है वो हमारा देश है। और उस देश में गर्व करना बहुत जरूरी है, उस देश पर, देश के संस्कृति पर गर्व करना बहुत जरूरी है, और स्कूल को छोड़ते हुए देश का अभिमान लेकर स्कूल से ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। हमारा आज का हर बच्चा दुर्भाग्य से ये लेकर बाहर निकलता है, क्या भारत देश है घटिया, मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे तो इंग्लैंड जाना है, मुझे तो गल्फ में जाना है, यही भाव लेकर वो स्कूल से बाहर निकलता है, हमारी संस्कृति को हेट करते हुए बाहर निकलता है, हमारे देश को हेट करते हुए बाहर निकलता है, हमारे देश की शिक्षा को, एजुकेशन को हेट करते हुए बाहर निकलता है। और उसका सारा दिमाग और एंटीना उसका किधर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में है उसका, आदर्श उसके वहां बैठे हुए हैं। और वहां पर क्या चल रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे आपके बच्चे अपने बच्चों को मार रहे हैं, यही वहां का कल्चर है, ध्यान रखना इस बात को, सोचना इस बारे में, बहुत गहराई है। हम लोग हंस रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत गहराई छुपी हुई है। और एक स्टेटमेंट है अमेरिका का, एक छोटी सी बच्ची सज धज के जा रही है तो लोग पूछते कहाँ जा रहे हो तुम, तो कह रहे हैं मेरी ग्रैंड मदर की तीसरी शादी आज, आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड माज थर्ड मैरिज। और ग्रैंड माँ इतनी बुढ़ी है, सज धज के वाइट गाउन पहन के, उसका दूल्हा भी बुढ़ा, वो सब टाई पहन के जा रहा है और नाच रहे हैं उसको, मैरिज किस ले रहे हैं, वो बच्चे लोग देख रहे हैं, वाह वंडरफुल। हमको इस कल्चर की जरूरत नहीं है, दिस इज एनिमल कल्चर, वी डोंट वॉन्ट दिस कल्चर, वी हैव अ रिच कल्चर हियर, हमारे पास बहुत ही गहरा और बहुत समृद्ध कल्चर है, उसको हमको बड़े गर्व के साथ अपनाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को स्कूल से, कॉलेज से बाहर निकलते समय इस गर्व के साथ बाहर निकलना चाहिए कि मैं भारतीय हूं और भारत की संस्कृति मेरी संस्कृति है, मुझे किसी संस्कृति की आवश्यकता नहीं है, आई एम इंडियन, आई हैव इंडियन कल्चर, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू गिव मी एनी कल्चर एक्सेप्ट इंडियन कल्चर। और ये हम लोग स्वीकार करेंगे तो हम यशस्वी हैं, नहीं तो हम लोग दिमाग से बिके हुए लोग हैं, मतलब क्या, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, बौद्धिक गुलामगिरी, हम लोग बुद्धि से बिके हुए लोग हैं, हमारा सारा तो दिमाग, दिलो दिमाग, मन जो है वो पाश्चात्य लोगों ने खरीद लिया है और वो हमको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, कैसे कपड़े पहनना है, क्या बोलना है, कैसे बाल रखना है, कैसे बात करना है, माता पिता को कैसे रखना है, संस्कृति, खाना पीना, शादी, ये सब वो हमको नचाते हैं अपनी उंगलियों पर, वहां से टाई करते हैं, कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा ड्रेस, कौन सा यहाँ पर प्रोपोगेट करना है, कौन सा सोप, कौन सा शैम्पू यहाँ पर डालना है इंडिया में, वो लोग तय करते हैं, हम लोग उसके गुलाम बनकर उसको फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आपको विनती करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा आपका लूट गया, कोई पॉकेट मारा आपका, कोई घर में डाका डाला, कुछ नहीं बिगड़ा आपका, एक्चुअली दोबारा आप कमा सकते हो मेहनत करके और खड़े हो सकते हो। रिश्ता टूट गया आपका, कोई डिवोर्स हो गया, नुकसान हो गया बहुत, लेकिन कल्चर गया आपका, कैरेक्टर गया, सब कुछ लूट गया आपका, धन दौलत, अच्छी खासी सेहत, सब कुछ होने पर भी अगर कैरेक्टर आपका गया तो आपका सब कुछ लूट गया लाइफ में। तो वो कैरेक्टर को बनाने के लिए विद्यालय होता है, टू मेक द कैरेक्टर, टू एक्सेप्ट द कल्चर, फॉर दैट देर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, विद्यापीठ, विद्यालय, ये सब क्यों होता है, ये कल्चर देने के लिए होता है। इसलिए आपको मैं विनती करता हूँ, हमारे पास आप आए हैं भगवान की दया से, तो यहाँ पर आपको जो भी मोती मिलते हैं उसको ले लो आप, हाँ, बाहर की दुनिया की ओर एंटीना मत लगाओ, आपको क्या मिल रहा है उसको स्वीकार करो और आपके जीवन को धन्य बनाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आनंद उत्सव है इसलिए मैं आपको एक आनंद की कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी है। तो एक बार हमेशा क्या होता है वृंदावन में, हाँ कि हमेशा बाखन चुराते हैं भगवान, और सब गोपियाँ आते हैं कंप्लेंट करने के लिए, प्रभावती और सब गोपियाँ। तो माता कहती है तुम सब लोग ना मेरे बच्चे के दुश्मन हो, हम बिना मतलब के बिना प्रूफ के हमेशा कंप्लेंट करते रहते हो, एक बार तो मेरे पास प्रूफ लेके आओ ना उसका कि वो रंगे हाथ लेके आओ, उसके हाथ में मुंह में मक्खन है तो मान लूंगी, क्योंकि तो मैं मानती नहीं कि वो मक्खन चोरी करता है। मेरे पास इतना बढ़िया मक्खन है, कमल की खुशबू वाला मक्खन मैं पैदा करती हूँ, कमल की खुशबू वाला घास मैं गाय को खिलाती हूँ, वो गाय जब वो कमल वाली खुशबू वाली घास खाते हैं तो दूध भी कमल के खुशबू वाले देते हैं, उस दूध से दही बनता है उसको भी कमल की खुशबू आती है। और वो आजकल का सितंबर 2015 का कमल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वो कमल की बात कर रहा हूँ जो खुशबूदार होता था उस समय। हाँ आजकल का तो रोज़ कमल कुछ भी ले लो, नो खुशबू एट ऑल, खाली लाते हैं बस पैसा खर्च करके, नो स्मेल एट ऑल। तो मेरे पास वो मक्खन है जो मैं उस गायों के दूध से बनाती हूँ और पेट भर के खिलाकर उसको भेजती हूँ। वो बोलता है और लो, नहीं नहीं मम्मी पेट भर गया मेरा, ऐसा बोलने के बाद मैं उसको खेलने को भेजती हूँ। और तुरंत आप आते हो बोलते हैं कि मक्खन चुराया, ये नामुमकिन चीज़ है, यू आर ऑल लायर्स, प्लीज ब्रिंग हिम रेड हैंडेड। तो गोपियाँ बहुत जाल बिछाती हैं बहुत सारा। हाँ तो उसकी एक कहानी ऐसी है, कई सारी कहानियाँ हैं, हम मुझे अगली बार मिलेगा तो याद करना, दूसरी आगे बताऊँगा। हाँ लेकिन कहानी ऐसी है कि वो तय करते हैं कि ये बहुत चालाक लड़का है, इसको हम लोग ट्रैप करेंगे एक दिन। तो उसको एक कमरे में बढ़िया से बढ़िया मक्खन बनाकर अनेक मटकों में उसको लटका कर नीचे लटकाते हैं लो लेवल पे, हाँ, और एक कमरा में सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, एक ही दरवाजा खुला रखते हैं, सब कुछ बंद रखते हैं। और सभी गोपियां तय करती है किसको आपको पकड़ना है, अभी देयर आर मेनी बॉयज एंड मेनी गर्ल्स सपोज, और सब लोगों को पकड़ना है तो वी विल कंफ्यूज ना, वी डोंट नो कि किसको पकड़ो किसको पकड़ो, सब भाग जाएंगे उसमें। तो अगर आपको बताया जाएगा कि मैडम आपको ये लड़के को पकड़ना है, जोसलिन आपको ये लड़के को पकड़ना है, तो इट्स लाइक यू नो कि मेरा लक्ष्य है कि उसको पकड़ना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो सब लोग जोड़ी तय कर देते हैं कि ललिता तो किसको पकड़ेगी, विशाखा तो किसको पकड़ेगी, कृष्ण को कौन पकड़ेगा, बलराम को कौन पकड़ेगा, सब तय करके बोलते हैं कि अभी हम लोग छुप जाएंगे। और वो घंटी बांध देते हैं उसके ऊपर, हर मटके के ऊपर, हर मटके के ऊपर घंटियों की लाइन बांध देते हैं और घंटियों को बोलते हैं घंटियां जैसे वो आएगा ना तो बजना अच्छी तरह से, हम लोग आपकी आवाज़ सुनते ही भाग भाग के आएंगे। और सब लोग झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद कृष्ण भगवान बलराम जी सब ग्वाल बालों को लेकर वहां पर आते हैं और देखते हैं, अरे वाह आज तो लगता है सूरज पश्चिम में आया होगा, इतना नीचे लगा के रखा है, कितनी खुशबू आ रही है, इतनी सुंदर, वाह मेरे तो मुंह में पानी निकल रहा है, मधुमंगल कर रहा है, जल्दी करो वादा दादा, वो डायलॉग मत मारो, तुरंत निकालो उसको। अरे ये तो घंटी लगी यहाँ पर, तो घंटी से बात करते, अरे घंटी तो क्यों यहाँ, नहीं नहीं अभी मुझे बताया गया है कि आप आएंगे खाएंगे तो बजना है मुझे, अरे लेकिन लेकिन बोलते नहीं नहीं देखो घंटी तू तो मेरी भक्त है ना, है ना, तू तो मेरा आदेश पालन करेगी ना, तो नहीं बजना बिल्कुल, मैं खाऊंगा बजना नहीं तुम बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल नहीं बजेंगे, आपके आगे है तो नहीं बजेंगे। तो फिर वो पास जाते हैं और हाथ निकालते हैं, हाथ से जब मुंह में डालते हैं तो सारी घंटियां बजने बजने लगती है, जैसे ही बजने लगते हैं सब भाग के आते हैं उसके ऊपर, जैसा जोड़ी तय किया है सबको पकड़ लेते हैं। और ये बहुत होशियार होते हैं, ये क्या करते हैं मालूम है, देखते हैं कि ऊपर खिड़की खुली है, एक सब नीचे के दरवाजे बंद है, ऊपर एक खिड़की खुली है, फटाफट एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, धराधर खिड़की के बाहर निकल जाते हैं, देखते देखते सब लोग खिड़की से पार, एक्सेप्ट वन पर्सन, कौन है वो, नहीं मधुमंगल, मधुमंगल ब्राह्मण का बेटा है, उसका पेट लड्डू खाकर बहुत बड़ा होता है और उसका पेट इतना बड़ा है कि खिड़की छोटी और पेट बड़ा, तो उसको ऊपर से वो दोनों हाथ से खींच रहे, चलो मधुमंगल, नीचे से लड़कियां खींच रही है और पेट बीच में अटका हुआ है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर नहीं है नीचे है, तो वो नीचे गिर जाता है, बाकी सब भाग जाते हैं। तो उसको सब लोग मिलकर इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, तो बोलता है कृष्णा बलराम बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा, इतना पीटूंगा तो मर जाऊंगा। तो कृष्ण बलराम बोल रहे हैं वहां से, मधुमंगल भाग भाग भाग, और उनकी आवाज भी वहां पर कम कम होती जा रही है क्योंकि वो दूर जाते ना, तो दूर से उनको आवाज सुनाई पड़ती है, मधुमंगल जो है रो रहा है बेचारा। तो कृष्ण बलराम चर्चा करते रहे, कुछ करना चाहिए, ब्राह्मण का बेटा है बेटा, अच्छा नहीं है ऐसा मार खाना, जाके कुछ आइडिया करते हैं। फिर वो लौट के आते यू टर्न लेके, क्यों रे तुम लोग ब्राह्मण के बेटे को मारते हो, हाँ शर्म नहीं आती तुमको, पता है कौन है ये, सांदीपनी मुनि का बेटा है, पूर्णमासी का पोता है, पूर्णमासी का बेटा सांदीपनी मुनि हमारे गुरु हैं, उनके पुत्र है ये, नंदीमुखी का भाई है ये, इसने कहीं जनेऊ का धागा तोड़ के शाप दिया ना, तो आप सब लोगों को 7 बार शादी किया हुआ बुड्ढी से शादी करना पड़ेगा। क्योंकि वो बोल रहा है मैं शाप दे दूं क्या, तोड़ू क्या, अभी मैं छोड़ूंगा तो शाप दे दूंगा कि 7 बार शादी किया हुआ बुड्ढे से आपकी शादी होगी सबकी। सब लोग गोपियां इतनी भोली भाली हैं, डर जाती है, बोले ऐसा हो सकता है, ब्राह्मण ने शाप दिया तो क्या नहीं हो सकता है। तो फिर जब गोपियां पीछे हट जाती, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, शाप देंगे तो बड़बड़ा हो जाएगा पूरा। तो फिर जैसे ही हटते हैं मैं तो मंगल ऐसा खड़ा हो जाता है, पूरा मैं शाप दूंगा आपको, तो वो सब बोलते नहीं नहीं बताओ क्या करना है, कहे जाओ सब लोग घर पे और हर एक गोपी अलग लड्डू बना के लेकर मेरे लिए, मतलब एवरीबडी शुड, इतनी सारी गोपियां हैं कोई लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, सब अलग टाइप का होना चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए। समझे आपको, मतलब आप में से कोई भी लड्डू डुप्लीकेट नहीं लेके आएंगे, आपका अलग लड्डू होगा, सबका अलग, वो भी बड़ी मात्रा में होगा। सब जाते हैं घर पे, तब तक ये बैठता है अपना आराम से बैठता है, फिर कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने घर से अलग अलग लड्डू बना के लेके आते हैं, उसको सिंहासन पे बिठाते हैं, और सिंहासन पे उसकी उसकी आरती उतारते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, उसको चरण दबाते हैं, उसको हवा देते हैं और लड्डू का भोग लगाते हैं, फिर बैठ के पूरा पैर पे रख के लड्डू खाता है। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। और इस कहानी में अनेक प्रकार की विविध कहानियां हैं कि भगवान क्या क्या करते हैं। एक बार उसको पकड़ के लेके जाते हैं, समझो एक बार उसको पकड़ लेते हैं, तो वो प्रभावती गोपी उसको पकड़ के ले जा रही है, हाथ पकड़ा हुआ ऐसा टाइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्योंकि खुशी है ना, अभी इतने दिन की बात, गाली खाने के बाद, माता यशोदा की गाली खाने के बाद में आज मुझे पहली बार मौका मिला है कि कान्हा को रेड हैंड पकड़ के ले जा रही हूं, आज मैं मैया को दिखा दूंगी, ले तुम्हारा कान्हा, देखो चोर को पकड़ के लेके आया, तुम बड़े शर्की मारते थे मेरे साथ में, हमेशा मुझे डिफीट करते थे, आज देखो तुम्हारे लाला को पकड़ के लाया मैंने। तो हाथ पकड़ के वो, उसको भी तो खुशी हो रही है, लेफ्ट राइट जा रही हो, तो ये बोल रहे कान में, अरे देखो प्रभावती ताई जी, मतलब ताई उसके बड़े चाचा की वो बीवी है, प्रभावती उपनंद बाबा की बीवी है, उपनंद बाबा नंद बाबा के बड़े भाई है, तो ताई जी कितना जोर से पकड़ा है हाथ आपने, कसके इतना दुख रहा है मेरा, इतना मुलायम हाथ है मेरा, मक्खन से भी मुलायम हाथ है, इतना कड़क पकड़ के रखा है, देखो खून भी यहाँ पर कैसा, देखो खून जमा हो गया, देखो देखो जुम खाना है। फिर वो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं। बाद में क्या हुआ, रास्ते पर ना बहुत लड़कियां खड़ी हैं, कुछ लड़के भी खड़े हैं उसमें, कौन लड़के थे वो, जो हमेशा पकड़े जाते थे और ये लोग भागते थे, तो तालियां बजा रहे हैं, अच्छा हुआ हमेशा हम पकड़े जाते हैं, आज तुमको पकड़ाना अच्छा हुआ, भगवान ने न्याय किया आज हमारे ऊपर, तो वो भी चिढ़ा रहे हैं उसको, और लड़कियां ताली पिटा के चिढ़ा रहे हैं उसको, अच्छा हुआ पकड़ा, अच्छा हुआ पकड़ा, हमको रोज तंग करता है ना लोग। तो प्रभावती को बोलते ताई जी मुझे बहुत शर्म आ रही है, इतने सारे लड़कों के भी, सब लड़के लड़कियां हंस रहे हैं, तुम मुझे पकड़ के ले जा रहे हो, एक काम करो ना, कम से कम तुम्हारी जो चुनरी है ना वो मेरे पर डाल देना, मतलब मुझे कम से कम मेरा चेहरा ढका रहेगा, तो मुझे फिर इतनी संकोच नहीं होगा मुझे, तो जल्दी जल्दी मैं ऐसा पीछे करके उसको ढक देती है चंदरी से। फिर कुछ देर बाद ताई जी के हाथ इतना पकड़ा है तुमने, जरा इतना अच्छा, वो जो डालती है ना वो चुनरी, तो वो एक लड़के को इशारा करते हैं, कन्हैया जी अपने बाजू में ले लेते हैं उसको, और फिर वो चादर बिछा रहे हैं, फिर विनती करे बार 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 बार, अरे हाथ में एक बदली कर देना ना, कम से कम ये हाथ में जब भाग नहीं रहा हूं, ये राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड एक बार पकड़ोगे ना, तो ये हैंड थोड़ा सा वो इतना लाल हो गया, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा ना, थोड़ा सा ब्लड सप्लाई वापस ठीक से हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, तो तुम ये हाथ पकड़ना, तो पहले नहीं 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 बोलते, बाद में बोलते कि क्या है इतना डिफिकल्ट नहीं ना, मैं तो ये हाथ पकड़ के रखूंगी, उसमें क्या है, तो वो हाँ करती है, और जब हाथ छोड़ती है तो ये कन्हैया इतना एक्सपर्ट एंड क्विक यू नो, वो उस लड़के का हाथ उसके हाथ में देता है, और चुनरी से नीचे झुक के पीछे से गायब हो जाता है, और वो तो मूड में है ना कि वो पकड़ा हुआ है करके, सब लोग ताली बजा रहे हैं, आवाज हो रहा है, शोर हो रहा है, तो उसको ध्यान में नहीं आता, वो अपने लेफ्ट राइट चल रही है, वो उसका हाथ जो है ना वो उसके हाथ में दिया हुआ है। पीछे से जाते हैं सीधा भाग के घर पहुंचता है, बोला मैया। तो यशोदा मैया थे, अरे बेटा तू आ गया, अच्छा मैया बहुत भूख लग रही है मुझे, बहुत मैं खेल के आया हूँ। तो तुरंत उसको गोद में लेती है, वो मक्खन खिलाती है, वो मक्खन खाने के बाद पेट भरता है, तो कहते हैं मैया नींद आ रही है मुझे, तो उसको तुरंत उसको बिस्तर में जाके सुला देती है, गीत गा के सुला देती है, सो जाता है। कुछ देर बाद में ताई जी आती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यशोदा दीदी आओ दीदी आज बाहर आ जाओ, आज तुम्हारे लाला को चांद को लेकर आई हूं मैं, हाँ कई दिन से तुम्हारी गालियां खा रही हूं, आज तुम्हारे लिए मैं प्रूफ लाई हूं, देखो आप खाओ। तो बोला अच्छा देखती हूँ किसको लाया, चलो जाते देखते। तो आते दरवाजे पे, तो मतलब उसको पता है ना कि मेरा बालक तो अंदर सोया हुआ है, और ये तो बोले जा रही है आज तो हाथ रंगे हाथ पकड़ा है, हाथ में भी मक्खन है, मुंह में मक्खन है, सबके सामने पकड़ा हुआ है, आज कोई डाउट नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई वकालत नहीं है, कुछ नहीं, आज डायरेक्ट रिजल्ट होगा इसका। तो अच्छा दिखाओ तो सही किसको लायो, तो ये लो, ऐसा करके दुपट्टा निकालती है, उसका ही लड़का उसके हाथ में, उसका ही लड़का। अरे हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, मैं तो उसको लेके आई थी, तो नीले हाथ वाला था, ये तो काले हाथ वाला है, ये तू कैसे यहां पर आ गया पगले, तू कहां से आ गया, तो मैं तुम्हारे साथ में ही था। पीछे से उठता है, मैया कौन शोर कर रहा है। पीछे से आके बोलते हैं, दे ले लो लो, तो वो कह रहे तुम्हें, तुमने मक्खन चुराया तो तुमको पकड़ के ले, देखो अपने बच्चे को पकड़ के लाती है और मुझे बताती है कि तुमको पकड़ के लाया है। मैंने कहा था ना मैया मैं कभी भी मक्खन चोरी नहीं करता, कभी भी तुम्हारे हाथ के बिना मैं किसी का मक्खन नहीं करता। फिर बाद में मैया को तो अभी मैया इज लाइक, लड़का पीछे खड़ा है उसके हाथ में लड़का उसका खुद का है, तो कहते हैं थोड़ी सी शर्म किया कर ना कम से कम, हाँ थोड़ी सी शर्म किया कर, इतनी बड़ी तू ताई जी मतलब मेरी बड़ी जाऊ है तू, हाँ जेठानी है मेरी, थोड़ी सी शर्म किया कर, अभी अच्छा हुआ कम से कम अपने बेटे को लेके आए, कल अपने पति को कवर करके लेके आएगी, बोलेगी ये लो तुम्हारा लड़का है ना। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय 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 श्री राधे श्याम।